कृष्ण उपस्थित सब भक्तों का हार्दिक पुनः अभिनंदन करता हूँ। कुछ भक्त रेगुलर कथा श्रवण में रुचि है और ऐसे में तो यहाँ पे कुछ कहने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरुजनों की कृपा से ही कुछ कहने का प्रयास करूँगा। उन्हीं के आशीर्वाद की कामना करते हुए स्थान पर बैठकर इस भागवतम के आज के श्लोक के पर हम कुछ चर्चा करेंगे जो हमने गुरुजनों से सीखा है। तो भागवतम सातवें स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग हमारे साथ इसको उच्चारण कीजिए। रत्नाकारश्च रत्नोघं
उसी तरह बहकर जाती है।
जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती हैं, आधुनिक विज्ञान विज्ञानी अन्य लोगों के शेयर का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार का समुद्र है। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इसकी व्याख्या नहीं की जाती, नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरण प्रदान करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव का सुखदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया है। ये विद्वान उन आधुनिक वैज्ञानियों से भिन्नता रखते हैं, जो अपने अपूर्ण इंद्रियां अनुभव से या निष्कर्ष निकालते हैं कि इस लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोक या तो शून्य है या धूल से भरा हुआ है। तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अभी जो प्रसंग हमारा चल रहा था कि कल भागवतम के इस 17वां श्लोक है, कल 13वें श्लोक पर चर्चा हुई थी, तो 14 का बहुत छोटा तात्पर्य था, इस कारण से 17 हमने लिया। तो 14, 15, 16 को हम सुनते हैं। तो इससे ये जो है प्रसंग हमें पूरा याद आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, जगो महेंद्रासन मोच स्थित विश्वापसुस्तंबूरुष्म दादय गंधर्व सिद्ध ऋषयस्तु वन्मुहुर् विद्याधरश्चाप्य सरस पांडव। सुखदेव गोस्वामी जी ने सॉरी ये बात सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे युधिष्ठिर महाराज को। तो हिरण्य प्रहलाद महाराज का चरित्र एक रूप से नारद जी के शिष्य का चरित्र अपने गुरु नारद मुनि ही युधिष्ठिर महाराज सामने इसका गुणगान कर रहे हैं। कह रहे कि हे युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे लोगों को निवासियों को वश में कर लिया। विश्वबसु तथा तंबू नामक दो गंधर्व और मैं तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उनकी यशगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। तात्पर्य छोटा सा तात्पर्य, कभी कभी असुर गण इतने शक्तिशाली हो उठते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों की उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नारद हिरण्यकशिपु के अधीन थे। किंतु कभी कभी इस जगत में ऐसे हो जाता है कि महापुरुष जहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस रूप में नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जैसे हम जानते हैं सब, हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली राजा, सब शक्तियों को उन्होंने अर्जित किए हुए थे, अपनी जो है हिरण्यकशिपु, आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ये कश्यप जी के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष ने दो भाई थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरणाक्ष ने पृथ्वी को लेके गर्भोदक समुद्र में छुपा दिया था। गर्भोदक समुद्र अगर देखा जाए तो नीचे ही है, गर्भोदक समुद्र जो है वहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल से जो है 14 लोग जो है उनके नाभि कमल में है। तो वहाँ लेके छुपा दिए पृथ्वी को, इस पृथ्वी लोग जो 7वें लोग पृथ्वी को छुपा दिए। तो भगवान को बराह रूप धारण करके उसका वध करना पड़ा, पृथ्वी को दोबारा स्थापित करना पड़ा। तो भाई के मरने पर कि विष्णु ने मेरा भाई को मारा है, तो रोष में बहुत क्रोधित हुआ और ये स्वयं भगवान से ही बदला लेने का तुल गया कि मैं भगवान से ही बदला लूंगा, इसका मैं अपने भाई का बदला लूंगा। तो उसने सबसे पहले तो अपने भाइयों का, अपने भाई का और अपने परिवारों को सांत्वना देकर भाई का अंत्येष्टि क्रिया किया। उसके बाद जाकर देवताओं का 10,000 वर्ष के लिए हिरण्यकश्यप राक्षस ने तपस्या किया जाकर। तो इतने देवताओं का 10,000 साल की तपस्या करने पर इतना भयंकर उसने तप किया कि उसके तप का प्रभाव सारे ब्रह्मांड में फैलने लगा। ऐसे ही दोनों भाई बड़े बहुत बड़े आतंकवादी थे और साथ में ये जो है तप में जुड़ गए। अब देवताओं का चिंता होने लगा, अब पता नहीं क्या करेगा, सबको चिंता होने लगा। लेकिन इसने इतनी घोर तपस्या किया कि उसकी तपस्या से प्रभावित होकर सभी देवता लोग जानते थे कि ये जो इसका जो वरदान का फल ये व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। लेकिन देवता लोग बस में हो जाते हैं तपस्या का फल देने में, वो बस में हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति देवी देवता का पूजा तपस्या करता है तो उसको देवी देवता फल देने में उनके बस में हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ता है, उनको बिना दे देवी देवता लोग रह नहीं पाते। क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट ही ऐसे है, जैसे भगवान कह रहे हैं सयोग्य प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति, देवताओं का मनुष्यों के बीच में ऐसे संबंध है कि ये लोग देवताओं का उपासना करें, उनके लिए यज्ञ करें तो देवता लोग हमारे आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे। और इस घोर तपस्या को जाके घोर तप करके उसने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी से उसने बहुत भयंकर उसने वरदान मांगा। उसने इतना वरदान मांगा कि पहले तो ब्रह्मा जी का स्तुति किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इतना घोर तपस्या किया था कि उसके सारा शरीर जो है बाल्मीक हो चुका था, सब जो है जो कीड़े सब खा चुके थे, तो बहुत घोर तपस्या किया था। तो ब्रह्मा जी ने आके उनको आए और उनको बताया कि आप क्यों क्या तप कर रहे हो, क्या वर चाहते हो। तो पहले ब्रह्मा जी का स्तुति किया हिरण्यकश्यपु ने, फिर उसने वरदान मांगा कि ना मैं किसी भी समय ना मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई देवता, ना कोई असुर। उस समय हिरण्यकश्यपु के ये भी भय था, अगर मैं इतनी शक्तिशाली होंगे लेकिन दूसरा कोई असुर मुझे हरा सकता है, दूसरे पुलोमा इत्यादि जो असुर हैं, तो ये लोग मुझे हरा सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना देवता लोग मुझे मारे, ना असुर मार सके, ना इस संसार में कोई राजा हमको वध कर सके, ना कोई सर्प, उसका सर्प से भय था सबसे भय था, ना कोई पशु, समझ में सबको जीत लिया लेकिन कोई पशु मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे पशु मार सके, ना मैं इस पृथ्वी में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, तो ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे ना मार सके। और साथ उसने कहा कि सभी योगियों का जो योग सिद्धि है वो सभी योगियों का योग सिद्धि मुझे प्रदान करें, और जैसे आपका ही इस ब्रह्मांड में जितना आप प्रसिद्ध हो उतना मैं भी प्रसिद्ध हूं। देखिए भक्त क्या मांग रहा है ऐसा भक्त कोई ऐसे मांगता नहीं, लेकिन ये जो भक्त है ब्रह्मा जी का भक्त, उनसे क्या मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो हालांकि ये बड़ा दुर्लभ है ये वरदान देना, लेकिन तब भी मैं तुमको देता हूँ। और ब्रह्मा तो ये वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी चले गए। तब हिरण्यकश्यपु ने जब पूरा वरदान मिला तब वो अहंकार में फूल गया। अहंकार में फूल कर उसने सारे लोगों को, सारे जो स्वर्ग लोग तक, इसमें देखा जाता कि जो नीचे के लोगों से स्वर्ग लोग तक ही हिरण्यकश्यपु राज कर सका, उसके ऊपर के लोग जो महर लोग, जल लोग, तप लोग, सत्य लोग इधर तक जा नहीं सका, अधिकतर वो इंद्र लोग जा, स्वर्ग में जा सका। तभी तो आज हिरण्यकश्यपु इंद्र के सिंहासन में बैठा हुआ है। तो उसकी जो इतना, सबसे पहले तो उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वी में सारे यज्ञ बंद करवा दिए, सारे गौओं का वध करवा दिए, जैसे आजकल के लोग जो गौओं का वध करते हैं, ऐसे हिरण्यकश्यपु के ही वंशज है, उन्हीं का, उसी का शासन है। हिरण्यकश्यपु का एक अंश इन देवता में प्रवेश कर गया जिसके कारण ये सब कर रहे हैं। तो उसने सभी पूरा पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दिया, सभी घरों को जलाने लगे, सब विद्यालय को जलाने लगे, अब ब्राह्मणों का यज्ञ बंद करवा दिए, घरों में आग लगाए। तो सबको उसने दिखा दिया कि मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है, अगर आप लोग कोई है यहाँ पे माई का लाल मुझसे लड़ाई करने वाला, तो इस पर उसने पूरा पृथ्वी में चैलेंज दिया। चलो पृथ्वी में दिया, उसके बाद नीचे के लोग उसको उससे डरने लगे। तो तब तक बलि महाराज नहीं थे, इस कारण से बलि महाराज तब नीचे भी नहीं थे, जन्म भी नहीं मतलब बलि महाराज का, इसलिए नीचे के लोग भी उसको यक्ष, राक्षस, गंधर्व सभी लोग उसे उससे डरने लगे कि अगर हमारे लोग में आ गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने विष्णु को ढूंढ रहा था, पूरा पृथ्वी भ्रमण करते थे, विष्णु कहाँ, विष्णु कहाँ, लेकिन विष्णु कहाँ कहाँ वो देख पाएगा। तो उसने स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र को सिंहासन से उठा के फेंक दिया और वो सिंहासन में खुद बैठने लगा। कल के श्लोक में भी आप देख रहे थे जो सिंहासन, जो इंद्र का भोग करने की जो सामग्री है वो खुद ही भोग करने लगा और सभी देवता लोग उससे डरने लगे, काफी सारे देवता तो वहां से भाग गए। तो नारद मुनि इस बात को कहते हुए कह रहे, तो इतना जो उसने हाहाकार मचाया और स्वर्ग में अपना अधिकार उसने जमा लिया, तो स्वर्ग के जो देवता लोग हैं, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर और यहाँ तक कि साधुओं, सप्तऋषि इत्यादि जो है वो भी विचार क्या करें, इसका गुणगान करने लगे। और नारद जी कह रहे मैं भी वहाँ पे था, मैं भी उसका गुणगान कर रहा था। तो हमारे आचार्य लोग बताते, प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि कभी कभी जो है कभी कभी जो साधु होते हैं वो भी किसी राजनेता के विषय में चर्चा करते हैं, कभी कभी चर्चा करते हैं, ये होती है। तो इसी प्रकार नारद जी जो है राजा हिरण्यकश्यपु को गुणगान करने लगे। तो हमारे आचार्यगण भी इसमें टीका देते, बताते हैं कि अंदर से तो नारद जी हिरण्यकश्यपु को जय विजय में से एक मानते हुए उनकी गुणगान कर रहे हैं, बाहर से लग रहा है कि मेरा गुणगान हो रहा है, लेकिन अंदर से नारद मुनि जय विजय का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे आचार्य तात्पर्य देते हैं। तो इसमें सभी ऋषि मुनि लोग ये जो है ये सब गुणगान कर रहे थे। तो मैं भी इसमें था, सोच रहा था जब इतना भयंकर असुर साम्राज्यों से चलाया हिरण्यकश्यपु ने, तो जो श्राप देने में सर्वश्रेष्ठ कौन है? दुर्वासा जी। दुर्वासा भक्तों को श्राप दे देते, बाकी लोगों को श्राप देते रहते, सब डरते रहते, जब दुर्वासा आया तो बस सब डरने लगे। तो मैं समझ रहा था उसमें दुर्वासा कहाँ था, दुर्वासा कहाँ था, इतना क्रोधित अगर उसको श्राप दे देते तभी बेचारे देवता लोग है वो शांतिपूर्वक अपने निवास स्थान पे रहते, लेकिन उस समय दुर्वासा जन्म भी नहीं हुआ था, इस कारण दुर्वासा थे नहीं, तो उससे पहले की घटना है। तो वहां पे सभी ऋषिगण लोग गुणगान कर रहे थे हिरण्यकश्यपु का, वाह क्या आपका साम्राज्य है, आपके जैसे राजा आज तक ना कोई पृथ्वी में हुआ है ना आगे कोई होगा। उसमें दुर्वासा होते अगर दुर्वासा बोलता कि भाई मेरा भी गुणगान करो, तो दुर्वासा दिखा देता कैसे गुणगान कर। तो आगे नारद मुनि कह रहे स एव वर्ण श्रामाभी क्रतु भी भूरि दक्षिणा इज्यमानः विभागान्न गृहं स्वन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते थे, तो वह यज्ञ की आहुतियों देवताओं को ना देकर स्वयं ले लेता था। तो वहां पर उसने फिर आदेश दिया कुछ लोगों को कि आप लोग यज्ञ करो, और जब यज्ञ एक पवित्र कार्य है जिसमें यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, और यज्ञ करते समय बहुत पूर्ण रूप से शुद्धता का रखना बहुत आवश्यकता पड़ती है। आज भी जब हम यज्ञ करते हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, हालांकि कलयुग में यज्ञ करना असंभव है, लेकिन जब भी वैष्णव लोग तब भी यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जितना हो सके उतना शुद्धता का देने का प्रयास किया जाता है। तो जो उसमें जो हवन सामग्री होता है वो सब देवताओं को, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम हवन सामग्री में हम क्या देते हैं, धान होता है, तिल होता है, खीर होता है, ज्वार होता है, ये हम हवन सामग्री डालते हैं। तो लेकिन ये नहीं कि देवता लोग वो तिल घी जो यही खाते होंगे, नहीं, उनको ये आहुतियाँ कुछ विशेष प्रकार के द्रव्य व्यंजन के रूप में प्राप्त होता है, तो वो उस रूप में परिवर्तन होके देवता लोग उसको ग्रहण करते हैं। और उसमें जो मेन जो देने वाला व्यक्ति होता है कौन, अग्नि जो है वो जाकर देता है, देखो लो इंद्र ये आपके लिए ये आहुति आया है, तो अलग अलग व्यंजन मिष्ठान वगैरह बना के देते। और जब वो हवन जैसे यज्ञ में खीर का हवन किया जाता है तो वो देवताओं को अमृत के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अलग अलग व्यंजन अलग अलग सुख के रूप में सुविधा के रूप में देवताओं का एंजॉयमेंट के रूप में जब आहुतियाँ दी जाती है तब देवता लोग प्रसन्न होते हैं, तब हम जीवों का वो आवश्यक पूर्ण करते हैं। तो लेकिन इस बार क्या क्या हिरण्यकश्यपु ने वो कोई देवताओं को नहीं दिया, है चलो तुम क्या खाओगे, अब कौन है, मैं भगवान हूँ। तो कहकर उसने जो है उसने क्या किया, सब आहुतियाँ खुद ही लेने लगा, देवताओं का देना बंद कर दिया। हालांकि देखा जाए एक रूप से इंद्र भी हिरण्यकश्यपु का भाई लगता है, ये सब कश्यप के संतान है, लेकिन आप देखिए जब अशुद्ध प्रवृत्ति वाले व्यक्ति क्या करते हैं, कभी इंद्र ने ऐसे नहीं किया होगा कि हाँ किसी का साम्राज्य को छीन कर भोग करने का, ये इंद्र में प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये जो है जो असुर की असुर भावना जिसके हृदय प्रवेश करती है उसमें भावना होती है, दूसरे की वस्तुओं को अपना मान लेता है, ये असुर प्रवृत्ति है। तो आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं अकृष्ट पच्च तस्यासी सप्त दीपवती मही तथा काम तथा गावो नाना स्वेर पदम नभ।
वासी नारद मुनि कह रहे उनको थोड़ा वैकुंठ का भाव में आ गए, तो वो कहने लगे ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों दीपों वाले पृथ्वी हिरण्यकश्यप के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करते थे। तो जो सात दीप है, वो सात दीप जो है इस जैसा अभी हमारा जो हम लोग जिस दीप में रहते हैं उसका नाम है जम्बू दीप, तो इस प्रकार सात और भी दीप है इसी पृथ्वी लोक में अभी भी है। वहाँ अभी तक मनुष्य ना जा पाया आज तक कि जो जम्बू दीप में जिन देशों का वर्णन किया गया है वो देश को भी आज तक लोगों ने पूरा देख नहीं पाया, जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको भी पूरा कंप्लीट जम्बू दीप को देख नहीं पाया। और इस जम्बू दीप से बाहर और सात दीप है, उस दीपों में अलग अलग लोग राज्य करते हैं। तो उसमें जैसे कि एक जगह पे रहते हैं हनुमान जी रहते हैं, और कहीं प्रहलाद जी रहते हैं, कहीं पे विवस्वत मनु रहते हैं, कहीं पे स्वयंभू मनु भी रहते हैं, उन दीपों में वो लोग राज्य करते हैं, अलग अलग राजा लोग उसमें अभी भी रहते हैं। तो सात दीप जो है उसमें से है जैसे सलमली दीप, कुक्ष दीप, क्रोंच दीप, साक दीप और पुष्कर दीप, पुष्कर दीप और प्लक्ष दीप, सात दीप है ना, जम्बू दीप, प्लक्ष दीप, पुष्कर दीप, साक दीप, क्रोंच दीप, कुक्ष दीप, सलमली दीप। तो इन दीपों के दीपों में जो समुद्र रहते हैं, ये सात समुद्र प्रभुपाद ने गिना है, ये सात दीपों में सात समुद्र है। तो जम्बू दीप में लवण समुद्र है, तो उसी प्रकार और जो इक्षु का गन्ने का रस का समुद्र है, शराब का समुद्र है, शराब पीने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाती है, और जहाँ पे घी मिलती है तो वहाँ भी यज्ञ करना बड़ा आसान हो जाती होगी, शुद्ध प्योर घी का समुद्र है। घृत दीप और दूध का भी सागर है, दही का भी सागर है, और मीठा जल हो सकता है रुआबजा या नींबू पानी वगैरह कुछ होगा, तो ऐसा उसका समुद्र है। तो उस समुद्र में वो जैसे हमारे समुद्र जाते हैं, हम पूरी जगन्नाथपुरी जाते देखते हैं कि समुद्र जैसे लहर उठती है, तो लहरों से पहले के समय में युधिष्ठिर महाराज के समय में यही प्रोसेस था। अब युधिष्ठिर महाराज में जो प्रोसेस था वो हिरण्यकश्यप के समय उसने वैसे प्रोसेस उन्होंने शुरू करवा दिया था, बिल्कुल शास्त्र विरोध कार्य उसने करवा दिया था। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, धर्मराज इस कारण से सारे प्रकृति उनको सहयोग कर रही थी, लेकिन हिरण्यकश्यप कोई धर्मराज नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव इतना भयंकर लोग भयंकर व्यक्ति था, सब प्रकृति को हिला के रखा हुआ था, सब डरते हुए उनको अपनी सामग्रियां अर्पित करने लगे। जैसे इसमें भी विचारणीय बात है कि अगर खीर का समुद्र है तो वहां का नदी भी दूध का ही नदी होगा, हो सकता है फुल क्रीम ना हो तो डबल डोन वाला दूध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र जो है समुद्र खारा है लेकिन नदी खारा थोड़ी ना, नदी का पानी तो मीठा ही होता। तो अलग अलग जो वहां पे अलग अलग नदियां होगा, खीर का भी नदी होगा, शराब का भी नदी होगा। तो इस प्रकार जो सारा उसने तो सभी सातों दीपों में सात समुद्र, उनसे हिरण्यकश्यप से डरते हुए अपनी अपनी सामग्रियां लेके जाके उनको देते थे। हमारा जो खारा समुद्र है इसमें रत्न इत्यादि जो है समुद्र से प्रकट होता, जो रियल रत्न है, हीरा है, मणि है, ये सब समुद्र स्वतः ही प्रदान करता था। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज कहा करते हैं कि जैसे समुद्र में, जैसे अभी अगर समुद्र का लहर आता है तो साइड में क्या होती है, झाग जम जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य के समय जो साइड में रत्न हीरे मणिक ये सब जो है आके समुद्र साइड दे जाता, तो जिनको लोगों को चाहिए होता वो लोग ले जाते, यूज करते थे, उपयोग करते थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली थी नहीं। आजकल समुद्र का फेंक कोई लेना चाहता है ऐसे ही पड़ा रहता, तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य समय भी वैसे ही होता था। तो स्वतः ही समुद्र देने लगा, लेकिन महाराज बताते हैं कि आज के समय में ना कोई समुद्र हमें हीरा मोती माणिक ये कोई कुछ ही प्रदान नहीं करता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा का कमी है पृथ्वी लोक में। अगर धर्म का पालन होगा, धर्म के रक्षा होगी, गायों की रक्षा होगी, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा होगी, तो बच्चों की रक्षा होगी, स्त्रियों की रक्षा होगी, तो भगवान की पूजा होगी, देवताओं के लिए यज्ञ होगा, तो पृथ्वी हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। संसार में जितने भी ये जो आतंकमय कार्य होता है, अन्य दुर्घटनाएं होती है जैसे केदारनाथ में और बाकी उड़ीसा में, इस प्रकार से पृथ्वी में हर पृथ्वी देखा जाता है कहीं ना कहीं स्टेट में होती रहती है। हमें तो हमारा भारत का ज्ञान होता है, अब भक्तों को तो भारत का भी पूरा ज्ञान नहीं होता क्या में क्या होता है। तो पूरा पृथ्वी में जो घटना होती है इसी कारण कि धर्म का कमी है, धर्म का लोग पालन नहीं करते। जब धर्म का पालन करेंगे तो महाराज बताते कि स्त्रियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सोने का क्वांटिटी बढ़ेगा, हीरा क्वांटिटी बढ़ेगा और इसका जो है क्वांटिटी बढ़ेगा। अभी किसी साधु ने बोल दिया कि वहां पे सोना मिलेगा, खुदाई हुआ कुछ नहीं मिला तो लेकिन पृथ्वी देगी नहीं ये सब सामान, कुछ भी नहीं देगी, क्योंकि यज्ञ होना बंद हो चुका। तो यहाँ पर सातों द्वीपों में जो अलग अलग समुद्र हैं वहाँ पे हो सकता है कोई विशिष्ट आइटम, जैसे अगर हमारा लवण समुद्र हीरा मणिक ये सब प्रदान करता है, खारा समुद्र, तो मीठा समुद्र क्या प्रदान नहीं करता होगा, पता नहीं हम लोगों को क्या 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 मिलता होगा, लेकिन हमारा इस हीरा मणि से कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती होगी। तो इस प्रकार जो है अलग अलग द्वीपों में अलग अलग समुद्र वो अपना बहुमूल्य भेंट लाकर हिरण्यकश्यप को देने लगा। और उस दिन में जो लोग खाते पीते थे, खेतीबाड़ी होती थी, उसको कोई ना हल जोतना पड़ता था ना बोना पड़ता था, वो सोता ही स्वाभाविक रूप से अपने आप देने लगा। क्यों? क्योंकि इसे डरते हुए, हिरण्यकश्यप से डरते हुए। अगर ये अभी जम्बूद्वीप में है, जम्बूद्वीप में से पृथ्वी लोक में गया, अभी स्वर्ग लोक में गया, अगर हमारा लोक में आ गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से सब लोग अपना अपना भेंट देने लगे। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी को उस समय थोड़ा सा वैकुंठ लोक का स्मरण आ गया, वो कह रहे इस प्रकार वो वैकुंठ लोकों की सुरभि या स्वर्ग लोगों की कामदुदा गाय के समान थी। तो पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गाय प्रचुर दूध देते, तथा आकाश अनोखा घटनाओं से सुसज्जित करते। तो वैकुंठ लोक में उदाहरण दे रहे कि वैकुंठ लोक में जिस प्रकार गाय पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, पर्याप्त दूध देती है, और वहाँ पे जो हम व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरा प्रदान करता, और वहाँ के जो वातावरण है वो जो है बहुत आनंदमय वातावरण रहता, बहुत आनंदमय, उस वातावरण को देख के मन प्रसन्न रहता। मन कभी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश में लिप्त नहीं रहता, इतना सुंदर वातावरण बना लेता है। उस वातावरण को हम लोग वसंत ऋतु को देख सकते हैं। वसंत ऋतु भगवान श्री कृष्ण को बहुत आनंद देने वाला होता है। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे थे तो वृंदावन में सदैव वसंत ऋतु ही रहती थी, तो कृष्ण को सभी ब्रजवासियों को सब आनंद में रहते थे। तो वैकुंठ लोक में भी वैसे ही वातावरण रहता। वहां पर जो कामधेनु गाय है, जो भगवान जिस गाय को चराते हैं, उस गाय का नाम है सुरभि, सुरभि गाय। और देवता लोग, देवलोक में प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि देवलोक में भी जो गाय रहती है उसका नाम है कामदुधा गाय, अपनी कामनाओं को पूरा करती है। जैसे कृष्ण लोक में किस चीज का अभाव नहीं है, वैसे ही स्वर्ग लोक में किस चीज का अभाव नहीं है। तो जैसे स्वर्ग लोक, जैसे वहां पर सुरभि गाय को, कृष्ण की जो गाय है सुरभि, उससे आप कुछ ही मांग लीजिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी का अभाव नहीं है। आप अभी जाखून से दूध मांग लो, कितना चाहिए, इतना चाहिए, चलो ले जाओ, उसी समय देगी। अगर तुम्हें घी चाहिए तो घी भी ले जाओ, तुम्हें जो कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ दे देती है गाय। वहाँ के कल्प वृक्ष भी वैसे उसी प्रकार का है। और वैसे ही कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में भी है, और वैसे गाय स्वर्गलोक में भी है। स्वर्गलोक में दूध की कमी नहीं होती, वहाँ भैंस का दूध नहीं मिलता, वहाँ गाय का दूध मिलती है। पाउडर का दूध नहीं मिलता, सोयाबीन का दूध नहीं मिलता, भैंस का नहीं मिलता, वहाँ प्योर कामधेनु कामदुधा गाय। कामधेनु भी बोलते हैं, जैसे अभी इंद्र जब यहाँ पे आया था, जब भगवान श्री कृष्ण से अपराध कर बैठा था, जब गोवर्धन भगवान धारण किए थे, तो उस समय गाय को लेके इंद्र ने आया। तो ये जो है उसे वर्णन किया गया कि वहाँ पे सुरभि गाय को लेके आया था। मतलब हो सकता है उसने सुरभि गाय से प्रार्थना किया होगा, थोड़ा सा आ जाओ, तो कृष्ण को संतुष्ट करना है, ऐसे मेरे से नाराज हो गया है, तो संतुष्ट करना, तुम आओ, तुम साथ में चलोगे तो शायद हो सकता है मेरे पे कृपा हो जाए। तो कृष्ण ने सुरभि गाय को देख कर ही स्वाभाविक रूप से, जैसे गाय का स्नेह अपने बछड़े के प्रति होता है, ऐसे ही भगवान का स्नेह अपने भक्तों के प्रति, भक्तों के प्रति भगवान का स्नेह होता है। इसलिए भक्त बनना ज्यादा आसान है, भक्त बनने से ज्यादा फायदा में रहेंगे, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है हमसे स्नेह करने लगेंगे। इस संसार में हमें स्नेह मिलने वाला नहीं है, इस संसार में कोई स्नेह नहीं मिल सकता, और स्नेह नाम की, प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जितना भगवान तो उस स्नेह का समुद्र है, प्रेम का समुद्र है। तो इसलिए अगर हम कृष्ण का भक्त बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कंट्रोलर व्यक्ति के हाथ में रहेंगे तो संसार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि भगवान हमारा क्यों रक्षा नहीं किए। हाँ चलो, हम तो जीवित है लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं किए। लेकिन हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रूप से भक्ति करेंगे गुरु साधु वैष्णव के अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो भगवान निश्चित रक्षा करते हैं। क्या कोई बता सकता है कोई भक्त कहीं भूखा मरा हो? कोई भगवान कृष्ण का भक्त कोई भूखा नहीं मरा। सुदामा भी भूखा नहीं मरा, वो संतुष्ट था। हमारे एक महाराज है जो भक्ति प्रियत भागवत महाराज, वो एक अपना रिलेशन बताते हैं। देखो मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इतना धन कमाते हैं, तब भी लोगों के पास अभाव रहता है। आप समझ लो किसी करोड़पति व्यक्ति के पास बोलोगे, भाई देखो तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, अब तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, बैठ के भगवान का भजन करो। लेकिन वो कहे कहाँ मेरे पास पैसा है, कहाँ मेरे पास पैसा है। कि जितना भी वो लोग पैसा सरकार को दिखाते, हमने सुना है बाहर के लोगों से, कहते हमारा जो दो नंबर का पैसा सरकार को दिखाते, एक नंबर का पैसा पड़ा रहता है। तो जो है तब भी लोग क्या करते हैं, अभाव महसूस करते हैं। और भक्ति प्रेत भागवत महाराज कह रहे थे, देखो मैं सन्यासी हूँ, मेरे को जितना चाहिए पैसा चाहिए होता वो कृष्ण मेरे को दे देते हैं, तो कोई पैसे मुझे टेंशन चिंता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों की पालन करते हैं। और जो सबसे ज्यादा स्नेह है वो भगवान में है। तो इसीलिए इंद्र ने भी गाय को लेकर आया कि कृष्ण का शायद इसको देखते हुए मेरे में स्नेह उमड़ पड़े। तो कह रहे कि वहां पे इस प्रकार सारे फैसिलिटी अवेलेबल थी, वैकुंठ लोक में से फैसिलिटी है। और लेकिन ये सब फैसिलिटी को हिरण्यकशिपु ने इस लोक में उसने उस फैसिलिटी को स्टेब्लिश कर दिया था सातों लोकों में कि ये सब फैसिलिटी हो और सारा सारा उल्टा काम। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार हिरण्यकशिपु का राज्य था। आज का जो राज्य है वो भी एक असुरी राज्य ही है, इतने गायों का वध होता है, किसी प्रकार का सुरक्षा प्रजा अनुभव नहीं करता। तो वही हिरण्यकशिपु राज्य में था, आज वही राज्य है। एक कलयुग में इसमें और वृद्धि होने वाली है। समझ लीजिए आज भी अगर जैसे हम लोग को थोड़ा सा संसार का जानते हैं कि सरकार ने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गायों का पथ हो गया, स्त्रियों का कोई सुरक्षा नहीं है और इतने सारे आंदोलन बन रहा है किसको ठीक करने के लिए। तो अभी वर्तमान कलयुग का प्रारंभ हुआ है और कलयुग ने मात्र अपने एक झलक दिखाया। अगर हम भक्त है, बुद्धिमान है, सुमेधसा है, यजंत ही सुमेधसा, चैतन्य महाप्रभु का इस आंदोलन में रहकर चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्राप्त करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रील प्रभुपाद छत्र छाया में रहते हैं, तो हमें इसे सीखनी चाहिए। भविष्य का कलयुग का एक झलक अभी हमने हमको भगवान ने दिखाया, इसमें और वृद्धि होगी, खूब मात्रा में वृद्धि होगी। तो हमें इसमें बचना चाहिए। हमें इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने भक्ति को और तीव्र करना चाहिए। जब संकीर्तन यज्ञ होगा तो स्वतः ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों की आवश्यकता है, भक्तों की आवश्यकता है। अगर भक्त लोग परिपूर्ण रूप से रहे तो किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। किसी भी चीज का कोई राज्य में, कोई राज्य में अगर अच्छा वहाँ होती है, आजकल अगर कहीं भी जाते हैं भारत में, गुजरात को सब लोग बड़ा फेमस राज्य बताते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, गुजरात बड़ा सुरक्षित देश है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे धर्म के प्रति ध्यान दिया जा रहा है, गायों का पथ के प्रति तो पूरा ही ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ किसी का शराब नहीं मिलता। तो इस कारण से वहाँ पे लोग जो है बड़ा पीसफुल अनुभव करते हैं। हम भी गए थे अभी, तो हमने देखा वहाँ के लोगों के चेहरे में एक अलग प्रकार का शांति सुख का अनुभव है। और दिल्ली वालों को भी एक अलग ही नाम का दिल वाले हैं, लेकिन पता है क्या है वो खुद ही जानते हैं। तो इस प्रकार धर्म का जब पालन किया जाता है तब स्वतः ही हमें हर चीज प्राप्त होगी। अगर हम हमारे भक्त का समुदाय अधिक मात्रा में बढ़ेगा और सब लोग बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र कीर्तन करेंगे, तो इस कीर्तन के माध्यम से अभी भी हमारे पास समय है, 10,000 साल हमारे पास है, कि इस कीर्तन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का हम हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तों का समुदाय बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सुख से रह पाएंगे, हम इसको कर पाएंगे। तो हम भक्तों को इसे पूरा प्रयास करना चाहिए, भक्ति क्रियाओं को, अपने साधन भजन को पूरा दृढ़ करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तरह तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे को परेशान करने के लिए तपस्या है। जो इस संसार में लोगों को अपना समय देते हैं, कल प्रभु जी बता रहे थे कि तपस्या क्या है, जैसे हमें डॉक्टर बनना एक तपस्या है, मतलब 5-6 साल तुम डॉक्टरी करोगे, पढ़ाई करोगे, 6 साल अपना खाना पीना सोना कम करोगे, खूब पढ़ाई करोगे, तुम्हें डॉक्टरी का फैसिलिटी मिलेगा, तब तुम क्या कर सकते हो, भोग कर सकते हो। अगर तुम अच्छा पढ़ाई तुम शिक्षक बनोगे तो तुम जो है सर तुम क्या बनोगे, तुम स्कूल के मास्टर बनोगे तो तुम्हें खूब धन मिलेगा। परम पूज्य श्री राधाकृष्ण महाराज बताते हैं कि हमारे भारत संस्कृति में पढ़ाई और चिकित्सक ये दोनों फ्री था। ये जो है ना जो इनका कौन है जो वैद्य स्वर्ग का वैद्य क्या नाम अश्विन कुमार कहाँ है अश्विन कुमार जो है ये दोनों वैद्य है ये डॉक्टर है तो ये कोई फीस नहीं लेते। तो हमारा भारत संस्कृति था कि डॉक्टरी और जो जो पढ़ाई है फ्री होना चाहिए। लेकिन आजकल ये डॉक्टरी और इस पढ़ाई में ही कितना पैसा लगता है, बच्चों की पढ़ाई में कितना पैसा लग रहा है। तो ये एक आसुरी स्वभाव है। तो ये आजकल हम लोग ऐसे भौतिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करके हम क्या संसार के प्रति और नुकसान ही पहुँचाते हैं। लोगों का शोषण कैसे करें, कैसे धन कमाएं, कैसे अर्जित करें, यही उद्देश्य रहा था। तो ये क्या ये असुरी प्रवृत्ति है। जो जो आजकल जो हर कोई इंजीनियर तो बनना ही चाहता है, इंजीनियर से कम वाले व्यक्ति को वो संसार में कुछ नहीं कर सकता, हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इंजीनियर का हमारा वैदिक संस्कृति क्या कहता है शिल्पी। तो आजकल जो जो लोग इंजीनियर पढ़ रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं इंजीनियर पढ़ के लोग क्या परमाणु बम बना रहे हैं संसार का विनाश करने के लिए। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, ये आसुरी तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। अवश्य हम करें लेकिन इन गुणों को शिक्षा को डॉक्टर को अपने जो भी भौतिक गुणों को अगर भक्ति में यूज नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज भी कोई कम नहीं थे, इसे हिरण्यकश्यप से कोई कम नहीं थे, लेकिन उनमें देव प्रकृति था, धर्म प्रकृति था। तो उन्हें संसार का पालन किया, अपने पुत्रों के समान पालन किया। और ये सर्वश्रेष्ठ असुर हिरण्यकश्यप असुरों का ही पालन किया। हाँ उस समय असुर बड़ा आनंद में रहते थे, जैसे इस समय असुर भी कुछ भी खा पीकर भोग विलास करके संतुष्ट नहीं होते, आनंद में रहते, उनके लिए वही आनंद है। तो वो असुर लोग उसमें पूरा आनंद में थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि असली तपस्या ये है कि हम लोग 16 माला का ध्यान को जप करें, चार नियम का पालन करें और साधु भक्तों में संग में रहें। तो ये असली तपस्या है। कल भी प्रभु जी बता रहे थे कि भक्तों में संग में रहना मुश्किल है, लेकिन उन मुश्किलों को सहते हुए अपने श्रवण कीर्तन करते हुए वैष्णव शास्त्र का पालन करते हुए हम भक्तों के संग में ही यदि रहेंगे तभी हम लोग इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और तभी हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, वो असली तपस्या है, वो आसुरी तपस्या नहीं है, वे देवी तपस्या है। देवी तपस्या करोगे देवताओं के समान भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करोगे। तो यही आज इस श्लोक में यही प्रभुपाद तात्पर्य है। कई चीज और भी कहीं भी था, ये समय हो चुका है, अभी हम समाप्त करेंगे। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक आधा प्रश्न हम ले सकते हैं। ध्रुव महाराज ने विष्णु के लिए तपस्या किया और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया। तो भगवान विष्णु के प्रति अगर किसी भाव से जाते हैं तो भगवान उसको शुद्ध कर देते। ध्रुव महाराज तो ये नहीं कहा ना कि भाई देखो मुझे पूरा राज्य चाहिए, हिरण्यकश्यप की तरह राज्य चाहिए, लेकिन उसके समान राज्य मिला, लेकिन भगवान के भक्ति थे, विष्णु के भक्ति करते हुए थे, उसको वो राज्य मिल गया। अब इनका भी ध्रुव महाराज को भी सभी लोग गुणगान करते, सभी देवी देवता सभी लोग गुणगान करते, ऋषि मुनि सब गुणगान करते, क्यों वे विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। हिरण्यकश्यप को कौन गुणगान करता है? क्योंकि वो देवी देवता का भक्त, देवी देवता भक्ति करने से हृदय शुद्ध नहीं होता, विष्णु भक्ति करने से हृदय भी शुद्ध हो जाती है और हमें आवश्यक वस्तु मिल जाती है। दोनों फायदा, भगवान की भक्ति में फायदा ही फायदा। और क्या सेल्स लगना होगा? और कोई? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे।